ईश्वर के नाम पर परम दयालु परम दयालु। अलकबारी की व्याख्या से निष्कर्ष। इसका सारांश डॉक्टर अकील बिन सलेम अलशम्मार ने दिया। सूरह अल इज़राइल। ईश्वर के नाम पर परम दयालु परम दयालु। तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माता पिता के प्रति दयालु रहें। उनमें से कोई एक या दोनों आपके द्वारा वयस्कता तक पहुंच जाएंगे, उनसे सॉरी न कहें या उन्हें डांटें नहीं, और उनसे प्यार से बात करें। हे मोहम्मद, तुम्हारे प्रभु का निर्णय तुम्हारे लिए उनके आदेश के अनुसार है। भगवान के अलावा किसी और की पूजा मत करो। मैं तुम्हें अपने माता पिता के प्रति दयालु होने का आदेश देता हूँ। उनके प्रति दयालु रहें और उनके प्रति दयालु रहें। यदि आपके साथ उनमें से एक या दोनों वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं, आप उनमें से किसी एक या दोनों में से जो कुछ भी देखें उससे भयभीत न हो, जिससे लोग आहत होते हैं, लेकिन उनके साथ धैर्य रखें। ठीक वैसे ही जैसे जब आप छोटे थे तो वह आपके साथ धैर्यवान था, और उन्हें शर्मिंदा न करें बल्कि उनसे दयालु और दयालु शब्दों में बात करें, और उन पर दया करके नम्रता के पंख नीचे कर दो और कहो, मेरे भगवान, उन पर दया करो जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला था। वे दोनों आपकी दया के कारण अपमानित हुए हैं, और ईश्वर से अपने माता पिता के लिए दया की प्रार्थना करें और कहो, हे प्रभु, उन पर दया कर और उन पर दया कर आपकी क्षमा और दया से। जब मैं छोटा था तो वे भी मेरे प्रति दयालु थे। तुम्हारा रब सबसे अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारी आत्मा में क्या है। यदि तुम नेक हो तो वह तौबा करने वालों को क्षमा करने वाला है। ऐ लोगो, तुम्हारा रब तुमसे बेहतर जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। तू अपने माता पिता के कार्यों का आदर करता है, उनमें जो है वह है उनके अधिकारों को कमतर आंकना और अवज्ञा करना। वह तुम्हें इसके लिए इनाम देगा, क्योंकि तूने उनके प्रति अपनी नियत पक्की कर रखी है और तुमने उनके द्वारा धर्म से परमेश्वर की आज्ञा मानी। यह उनके लिए था जो फिसलने के बाद दूर हो गए, और जो गलती के बाद पछताएगा उसे माफ कर दिया जाएगा। रिश्तेदार को उसका हक और गरीब व्यक्ति को दो। रास्ता बनाओ और फिजूल खर्ची मत करो। खर्च करने वाले शैतानों के भाई थे, और शैतान अपने रब के प्रति कृतघ्न है। हे मोहम्मद, उससे अपने संबंध और उस पर अपनी दयालुता के कारण अपनी रिश्तेदारी को उसका उचित अधिकार दो, जिन्हें जरूरतमंदों द्वारा अपमानित किया जाता है, और जिस यात्री को टोका जाए उसकी सहायता करो। हे मोहम्मद, ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है उसे उसकी अवज्ञा करके अलग मत करो। जो लोग परमेश्वर की अवज्ञा करके अपना धन बिखेरते हैं वे शैतानों के मित्र हैं। शैतान उन आशीर्वादों के लिए कृतघ्न था जो उसके प्रभु ने उसे दिए थे, और उसने उनके लिए उसे धन्यवाद नहीं दिया। और यदि तुम अपने रब से दयालुता की आशा करते हुए उससे विमुख हो जाओ तो उनसे नम्रतापूर्वक बात करो। और यदि तुम उन लोगों से मुंह मोड़ोगे जिनको मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि तुम्हारे सामने उनको उनका अधिकार दे दो, जब आप उनसे पूछें तो इस बात से सावधान रहें कि आपको क्या करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। उनकी ओर से विनय और उन पर दया, उस प्रावधान की प्रतीक्षा करना चाहते हैं जिसकी आप अपने प्रभु से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप आशा करते हैं कि भगवान आपके लिए इसे आसान बना देंगे। उन्हें निराश मत करो, लेकिन इन्हें एक खूबसूरत वादा समझें। यह कहकर भगवान देगा इसलिए मैं तुम्हें दूंगा। अपने हाथ को अपनी गर्दन पर न बांधें और न ही उसे पूरी तरह फैलाएं, तो आप दोषी और व्यथित बैठे रहते हैं। और हे मोहम्मद, ईश्वर के अधिकारों पर खर्च किए बिना अपना हाथ मत रोको। इस पर कुछ भी खर्च न करें। जंजीर से बंधे आदमी ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और उपहार के साथ इसका पूरी तरह से विस्तार न करें तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता। यदि तुम उन्हें न दोगे तो तुम्हारे भिखारी तुम पर दोष लगाएंगे और आप अपना पैसा पाने और चले जाने के लिए जल्दबाजी करने के लिए खुद को दोषी मानते हैं और तुम उस दोष को लेकर बैठे हो जिसे काट दिया गया है और तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा रब जिसे चाहता और जिसे चाहता है उसे जीविका प्रदान करता है। वास्तव में वह अपने सेवकों के प्रति सर्वज्ञ और सर्वदर्शी था। वास्तव में आपका भगवान हे मुहम्मद अपने सेवकों में से जिसे भी चाहता है अपना प्रावधान बढ़ाता है और वह उन पर विस्तार करता है। वह खुद को जिसे चाहता है उसी तक सीमित रखता है और उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। तुम्हारा रब अपने बंदों से वाकिफ है और जीविका की प्रचुरता से किसको लाभ होता है और किसको हानि होती है उन्हें उनकी योजनाओं और नीतियों की जानकारी है। और गरीबी के डर से अपने बच्चों को मत मारो। हम उनके और आपके लिए प्रावधान करते हैं। उन्हें मारना एक बड़ी गलती थी। और डर और गरीबी के कारण अपने बच्चों को मत मारो। हम उनके और आपके लिए प्रावधान करते हैं। उन्हें मारना पाप और महापाप था। और व्यभिचार के निकट न जाओ। यह अश्लील और बुरा था। और हे लोगों व्यभिचार के निकट न जाओ। व्यभिचार एक अभद्रता थी और व्यभिचार का मार्ग बुरा था। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों का मार्ग अपने साथी को नरक की आग में पहुंचा देता है और जिस आत्मा को ईश्वर ने हराम किया है उसे न्याय के बिना न मारो। और जो कोई जुल्म से क़त्ल किया गया हमने उसकी संरक्षकता का अधिकार दे दिया है। उसे हत्या में अति न करने दें क्योंकि वह विजयी हुआ था। उसने यह भी आदेश दिया कि तुम लोगों को उस आत्मा को नहीं मारना चाहिए जिसे ईश्वर ने मारने से मना किया है बिना अधिकार के। इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद अविश्वास के अलावा हत्या करना उसका अधिकार नहीं है। या घोड़े या शक्तियों के पीछे व्यभिचार यह वही है। और जो कोई हमारे बताए अर्थों से इतर मारा गया हमने अन्यायपूर्वक मारे गए व्यक्ति के अभिभावक को उसके अभिभावक के हत्यारे पर अधिकार दिया है। वह चाहे तो उससे मदद मांग सकता है और उसके अभिभावक उसे मार भी सकते हैं। वह चाहे तो उसे माफ कर सकता है और चाहे तो ब्लड मनी ले सकता है। मारे गए व्यक्ति के संरक्षक को हत्या करने में अति नहीं करनी चाहिए ताकि उसके अभिभावक के हत्यारे के अलावा कोई और मारा जाए। मारे गए व्यक्ति का संरक्षक विजयी हुआ। जब तक वह अपनी पूर्ण परिपक्वता तक न पहुंच जाए तब तक दो युवकों की संपत्ति के पास सबसे अच्छे को छोड़कर न जाए। उन्होंने वाचा पूरी की क्योंकि वाचा जवाबदेह थी। उसने यह भी आदेश दिया कि तुम्हें किसी अनाथ का भोजन खाकर उसके धन का त्याग नहीं करना चाहिए। खर्चीला और समय से पहले बड़ा हो जाना लेकिन इसे क्रिया के करीब ले आओ जो बेहतर है। ऐसा इसलिए है ताकि आप निवेश सुधार और सावधानी के साथ उसके लिए इसका निपटान करें। जब तक वह अपने दिमाग को विकसित करने और अपने पैसे का प्रबंधन करने के समय तक नहीं पहुंच जाता। और जो अनुबंध आप लोगों के साथ करते हैं उसे पूरा करें। परमेश्वर उससे प्रश्न करेगा जो वाचा तोड़ता है उसे तोड़ने के बारे में। अनुबंध मत तोड़ो। जब आप बोलें तो पूरा माप दें और सीधे तराजू से तौलें। यह बेहतर और बेहतर ढंग से समझा गया है। उन्होंने आदेश दिया कि यदि आप लोगों को उनका अधिकार देते हैं तो आपको उन्हें पूरा पैसा देना होगा। उन्होंने यह भी निर्णय दिया कि जिस न्याय में जज पर आरोप लगाया गया था उसी से तौलोगे तो उन्हें तौलना चाहिए। हे लोगो, तुम उसी के प्रति विश्वासयोग्य रहोगे जिसके द्वारा तुम न्याय के साथ नापते और तौलते हो। उन्हें कम आंकना आपके लिए बेहतर है और आपके लिए सर्वोत्तम रिटर्न, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है। इनाम आपके लिए अच्छा होगा। जिस चीज का आपको ज्ञान न हो उसे न रोकें। उसके लिए श्रवण, दृष्टि और हृदय सभी जिम्मेदार थे। जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है उसे लोगों को न बताएं। इसलिए तुम उन पर झूठ का आरोप लगाते हो और उनके विरुद्ध गवाही देते हो जो सच्ची नहीं है। भगवान इन अंगों से पूछ रहे हैं कि उनके मालिक ने क्या कहा, और उसके अंग सत्य की गवाही देते हैं। और प्रियवी पर आनंद से न चलो। तू न तो प्रियवी में घुसेगा और न पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंचेगा। और प्रियवी पर अहंकार और अभिमान करते हुए न चलो। तुम अपने अहंकार से पृथ्वी को पार नहीं करोगे। पहाड़ आपके अभिमान और अहंकार की ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे। यह सब तुम्हारे रब के लिए बुरा और घृणित है। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, उसका बुरा काम आपके भगवान के लिए घृणित है, हे मोहम्मद। इसलिए इसकी वास्तविकता को समझें और उस पर अमल करें। यह उस ज्ञान में से है जो तुम्हारे रब ने तुम पर प्रकट किया है। और परमेश्वर के साथ दूसरा परमेश्वर मत बनाओ, तो उसे नरक में डाला जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा और पराजित किया जाएगा। मोहम्मद, हमने तुम्हें यही समझाया था उन सुंदर नैतिकताओं के बारे में जिनकी हमने आपको आज्ञा दी थी, उस ज्ञान से जो हमने इस पुस्तक में आपके सामने प्रकट किया है। अपनी इबादत में खुदा को साझीदार न बनाओ, तो तुम्हें नरक में दोषी ठहराया जाएगा और तुम स्वयं को दोषी ठहराओगे। निर्वासित किया गया और आग में भून दिया गया। क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें बेटों के साथ चुन लिया है और उसने देवदूतों को ले लिया? आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तुम्हारा रब तुम्हें नर संतान से पुरस्कृत करे और उसने देवदूतों को ले लिया और तुम उन्हें अपने लिए तृप्त नहीं करते। आप लोग बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं और तुम परमेश्वर के विरुद्ध अपने विषय में झूठ गढ़ते हो। हमने इस कुरान में उल्लेख किया है ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके। इससे उनका अलगाव ही बढ़ता है। हमने इसे इन बहुदेववादियों को समर्पित कर दिया है, जो लोग इस कुरान में ईश्वर की निंदा करते हैं। पाठ, श्लोक और तर्क। हमने उन्हें इसके बारे में चेतावनी दी और उन्हें चेतावनी दी उन तर्कों को याद करने के लिए। उन्हें सबक माना जाता है जिससे उनकी हमारी याद बढ़ती है, सिवाय सच्चाई से दूर जाने और उससे दूर जाने के। कहो, काश उसके पास देवता होते जैसा कि वे कहते हैं। यदि तुम सिंहासन के स्वामी तक पहुंचने का मार्ग खोजते हो, कहो, हे मोहम्मद, इन बहुदेववादियों से, यदि ऐसा होता जैसा कि आप कहते हैं कि उसके पास देवता थे, यदि ये देवता सामीप्य चाहते हैं महान सिंहासन के स्वामी ईश्वर की ओर से, मैंने उनसे रैंक मांगी, उसकी जय हो। वे क्या कहते हैं इसके बारे में? बहुत ऊंचाई, सातों आकाश और धरती उसकी महिमा करते हैं, और उनमें से कौन, और ऐसी कोई चीज नहीं जो उसकी स्तुति न करती हो, परंतु उनकी प्रशंसा तुम्हें समझ में नहीं आती। वह दयालु और क्षमाशील था। हे लोगों, ईश्वर के प्रति आपकी पवित्रता और आप जो कहते हैं उससे ऊपर आपकी श्रेष्ठता। हे बहुदेववादियों, ईश्वर तुम्हें महान बनाए, जिसे आपने सात आकाश और धरती के रूप में वर्णित किया है, और उनमें से जो लोग उस पर ईमान लाए हैं, फरिश्तों, इंसानों और जिन्नों से, और उसकी रचना का कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वह उसकी स्तुति करता है। लेकिन तुम्हें प्रशंसा समझ में नहीं आती, सिवाय उन लोगों की प्रशंसा के जो उसकी स्तुति कर रहे थे। आपकी जीभ की तरह ईश्वर सहनशील है और अपनी रचना में जल्दबाजी नहीं करता। मैं उनको उनके पापों से ढांप दूंगा यदि वे इससे तौबा कर लें। और यदि आप कुरान पढ़ते हैं, हमने आपके और उन लोगों के बीच समझौता किया है। वे परलोक में विश्वास नहीं करते, एक छिपा हुआ पर्दा। और यदि तुम पढ़ते हो हे मुहम्मद कुरान इन बहुदेववादियों पर, हमने तुम्हारे और उनके बीच एक पर्दा डाल दिया है। यह उनके हृदयों को समझने से रोकता है। आप उन्हें क्या पढ़ाते हैं? और नौकरों से छिपा हुआ है, वे इसे नहीं देखते और अपनी आंखें इसे नहीं समझते। और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया, वे जो समझते हैं वह उनके कानों में तत्परता है। और यदि तुम अपने रब का जिक्र अकेले कुरान में करो, भले ही उन्हें द्वेषवश मजबूर किया गया हो, और हमने इन लोगों के दिलों पर राज रखा। जो लोग परलोक में विश्वास नहीं करते वे छुपे हुए हैं। यह वही है जो उसे ईश्वर के त्याग से बचाता है। उन्हें जो सुनाया जाता है उसे वे समझ नहीं पाते। और हमने उनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया, उसकी सुनने की क्षमता और बहरेपन के बारे में। और यदि आप कहते हैं कि कुरान में ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, और आप इसका पाठ करें, वे तितर-बितर हो गए और तुम्हें छोड़ गए। आप जो कहते हैं उसके प्रति घृणा और उसके प्रति अहंकार, और वे डरते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर एक होगा। हम जानते हैं कि वे क्या सुन रहे हैं। वे आपकी बात सुनते हैं। और जब वे बच गए तो जालिमों ने कहा, जब जालिम कहते हैं आप केवल मोहित व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, हम बेहतर जानते हैं मुहम्मद, वे क्या सुनते हैं। जो लोग परलोक में विश्वास नहीं करते वे आपकी बात सुनते हैं। और तुम परमेश्वर की पुस्तक पढ़ते हो, और वे दार अलंदवा में बच गए। उनका एकमात्र समाधान यह दावा करना था कि वह पागल और जादूगर था। जब बहुदेववादी कहते हैं आप केवल मोहित व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, देखिए वे आपको कैसे कहावते देते हैं। उन्होंने प्राथमिकता दी और कोई रास्ता नहीं खोज सके। हे मुहम्मद, अपने दिल की आंखों से देखो, विचार करें कि उन्होंने आपके सामने कहावतें कैसे प्रस्तुत की, और वे आपके जैसे ही दिखते थे। वे कहते हैं कि वह मंत्रमुग्ध है, वह एक कवि है और वह पागल है। इसलिए वे जानबूझकर रास्ते से भटक गए। वे सत्य के मार्ग पर नहीं चलते, उनकी गुमराही और उससे दूरी के कारण। और उन्होंने कहा, यदि हम हड्डियां और कूड़ाक्षरा होते, सचमुच हम एक नई रचना के साथ पुनर्जीवित होंगे। बहुदेववादियों ने कहा, यदि हम मरने के बाद भी महान हैं और हमारी कब्रों में धूल, कब्रों में हमारे भाग्य के बाद हम पुनर्जीवित होंगे। उन्होंने एक नई सुविधा बनाई, हम वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अलकबारी की व्याख्या से निष्कर्ष।